नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इसराइल की यात्रा पर रवाना हुए। ये उनकी दूसरी इसराइल यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था, दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बातचीत होगी। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया को बताया कि प्रधानमंत्री आज इसराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करेंगे।
ये यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और इन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में हम काफी एरियाज में फोकस करते हैं। इस विजिट के दौरान वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से मिलेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति हर्जोग जी से मिलेंगे और यहाँ की जो कनेसेट है जिसको हमारे इधर पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ की कनेसेट को एड्रेस भी करेंगे। सो ये बड़े इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके विजिट के और विजिट के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाएंगे।
इसराइल रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इसराइल की यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और मजबूत होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और दोनों देशों के लिए एक लचीले, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच सौहार्दपूर्ण और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा का एक ठोस एजेंडा है और इससे दोनों देशों के संबंधों को काफी मजबूती मिलेगी। भारत और इसराइल ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों, उनके समर्थकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों और मददगारों से निपटने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में आयोजित भारत इसराइल संयुक्त कार्य समूह JWG की आतंकरोधी 10वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार व्यापक और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंची। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला आयुष मंत्रालय ने बुलढाणा जिले के शेगांव में आयोजित किया है। वे राज्य स्तरीय पहल एकता और विश्वास के जरिए महाराष्ट्र का स्वर्ण युग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगी। इसका आयोजन नागपुर में ब्रह्मा कुमारी समाज ने किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जाएगा। आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों और नोडल अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा ताकि तैयारियों और समन्वय का आकलन किया जा सके। आयोग कल तमिलनाडु में भी चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में तैनात किए जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के जवानों को आवंटित वाहनों में GPS ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि GPS ट्रैकिंग प्रणाली से आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक CAPF कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। आयोग ने पिछले चुनावों में CAPF कर्मियों की अप्रभावी तैनाती को लेकर मिली शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है। सेना और रेलवे सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीरों और सैन्य कर्मियों के लिए रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के वास्ते सहयोग करेंगे। भारतीय सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य रेलवे में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक उत्तरदायी सहायता तंत्र स्थापित करना है। ये ढांचा पूर्व सैनिकों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ICC 2020 विश्व कप में आज सुपर 8 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कोलंबो में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।